देखिए ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। इनका सवाल ये है कि इस्लाम के किसी हुक्म में कंट्राडिक्शन नहीं है, हालांकि ये गलत है बात। बहुत सारी चीज़ों में तदरीज है। जैसे इवन अगर मैं आपको देखिए इधर इतने दलाइल देने के साथ अगर ये भी बात कह दूं कि हैं ऐसे दलाइल मौजूद कि चेहरे का पर्दा ना करो तो इस ओके, शर्त एक ये है कि उस पर कुछ ना लगाओ, ये भी दलाइल मौजूद है और उनके साउंड दलाइल है। और ये जो बात है कि चेहरे का पर्दा करो, इसके दलाइल स्ट्रांग है। मैं इसको कैसे लेती हूँ, ये तदरीज है। चलो उठो, कपड़े ठीक करो पहले अपने। पहले तो दुपट्टा लेने ही भूल जाती थी, अब लेना शुरू करो। कपड़े जिस्म पे रख के सिले हुए थे इसको ढीले करो। चलो फर्स्ट स्टेप ये करो, बहुत थिन थे, बहुत इलास्टिसिटी वाले थे, ज़रा सख्त करो। आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टा लो, चलो उठो खोल के ले लो। कुछ दिन उस तरह लिया, चलो इसको सर पे ले लो। और जो दुपट्टा हमारे पाकिस्तानी कल्चर में लेते हैं यूं टिक करके आधा सा ऊपर कट सा, इधर से भी बाल दिख रहे हैं, पीछे से भी दिख रहे हैं, और वो बाहर के मेहमानों को छोड़ने के लिए ड्राइवर भी खड़े हैं, माली बाबे भी खड़े हैं, और आफटा से वो थोड़ा सा दुपट्टा लिया और फटाफट आप बैठ जाते हैं, वो जिम बाहर आ रहे हैं, वो दुपट्टा क्या छुपाता है। और आप देखिए कि याद रखिए कि जब औरत सजद के संवर के जाती है, सिर्फ पढ़े लिखे मुहज्जब और आप ही के स्टेटस के लोग नहीं उसको देखते, गरीब माली बाबे ड्राइवर भी देखते हैं। किसी ने कहा तुमने कभी सोचा कि ये गर्मियों में ड्राइवरों का मिजाज क्यों इतना खुशगवार हो जाता है? कहने लगी हमारे लॉन के कपड़ों की वजह से। वो कहते हैं हमें फिल्मों की क्या ज़रूरत है। किसी का मैं कमेंट सुन रही थी कि एक शादी थी तो वहाँ एक लड़की जो थी वो डांस कर रही थी, और ऐसा डांस के कभी कहती फिल्मों में नहीं देखा होगा, मैं तो कभी इसको मानती भी ना अगर मैंने बाकी इस तरह की एक दो चीज़ें ना देखी होती किसी तरह से। तो वो कहती कि पीछे कोई बैठे हुए थे तो वो कमेंट क्या दे रहे थे, क्या खूब डांस कर रही है, अब किसको ज़रूरत है कोठे पे जाने की। और एक सिस्टर का कमेंट क्या था कि किसी शादी में गई, कहती कि मेरा दीन का सफ़र शुरू हो चुका था तो मैं इसी तरह वही बात जो मरवतन हम लोग चल चला जाते हैं अबाया पहन के, और गई, कहती वहाँ गई तो वहाँ का माहौल ना गुफ्ता वे था, लड़कियाँ डांस भी कर रही और सबसे बढ़ के ऊपर मैं मूवी मैन था। अब वो लड़की जिस तरह कहती डांस कर रही थी और लोग उस लड़की को देख रहे थे और मैं मूवी मैन को देख रही थी, तो मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर कि ये किस किस एंगल से उसके ले रहा है। कहती मैं उस मूवी वाले के पास गई, मैंने कहा कि तुम ये मूवी नहीं बनाओ इस वक्त, तो कहता है कि जी हमें घर वालों ने बुलाया, हमने बनानी है। किस्सा मुख्तसर वो कहती है कि हुआ क्या कि जब ये मामला पूरा हुआ तो मैं घर वाली के पास गई, मैंने कहा कि देखो ये लड़का मूवी बना रहा है तो तुम्हारी ये बच्ची इस तरह डांस कर रही। कहती हाँ फिर खुशी का मौका है, बच्चियाँ ऐसी करती हैं। कहती कि मुझे तो कहती उड़जन आ रही, कह रही एक और भी मेरे हमख्याल साथी थी वो भी उधर थी, उनको भी मैं देख रही हूँ बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही हैं। खैर कहती कि हमने उनको इस बात पर कायल किया कि अब अगर इसने मूवी बना ली है ना तो इसे ओरिजिनल कैसेट अभी ले लो, इसको घर ना जाने दो, पता नहीं वो इसके साथ क्या करेगा। खैर कहती कि हम उस मूवी मैन के पास गए, हमने कहा कि ये कैसेट हमें दे दो। कहते मैं तो नहीं दूंगा, ये तो मेरी है अभी, इसमें तो अभी एडिटिंग होनी है, डबिंग होनी है, दिस एंड दैट। कहती कि मैंने घर वाली से कहा कि अगर आपने बनवा ही ली है, इस एक ने तो देख ली, इसको वापस दें। तो कहती नहीं ना, फिर जाहिर है उसको मूवी में सेट करना करा। कहती हम ये बातें कर रहे थे, मूवी मैन वहां से निकला भाग गया। कहती घर आके जो बेचैनी मुझे लगी, उन्हीं दिनों में शहर में एक खबर बड़ी आम थी कि एक ऐसी वीडियो रिलीज हुई है दुबई में, किसी ने उसको देखा कि जिसका नाम रखा था शरीफों का मुजरा, और उसमें उन्होंने हमारे ही ये घरों के जो मेहंदी और उपटनों के जो फंक्शंस हैं उनके क्लिप्स लेकर एक फिल्म बनाई हुई थी। और एक लड़का भाई जो उसी फिल्म को देखने गया हुआ था, यानी किसने कि उसमें अपनी बहन का क्लिप देख के वो जहनी तवाजन खो गया था। कैन यू बिलीव, ये आज के दौर के हालात है, वी आर मुस्लिम। और माँ बाप कहते इट्स ओके, बाप खुद लोगों को तस्वीरें भेजते हैं वल्लाही कि ये देखो शादी की तैयारियों में ये रात 4-4 बजे तक डांस करती हैं, और चलो वो बाप मना ना करता उसने उसकी तस्वीर खींच के किसी ऐसी मीडिया पर डाल दी कि तुम भी देख लो ये मेरी बच्चियां भाई की शादी की तैयारियां कर रही हैं। ये करीब की बातें हैं वल्लाही, ये कोई बाहर की बातें नहीं है। आज आप बताइए आप किस किस चीज को करेंगे। पर्दा जो इतने काड़ है खुद बहुत झिझक आती है। मुझे ऐसे किसी ब्रदर की बात याद आ रही है, जैसे पहले दौर में लोग सिनेमा में भी चले जाते थे, कहते जिस दिन दाढ़ी रख ली उसके बाद सिनेमा में कदम नहीं रखा, शर्म आती थी कि इस मुंह के साथ जाऊंगा। और कई सिस्टर्स ऐसी हैं जब निकाब और हिजाब और अबाया ठीक पहन लेती हैं वो फिर नहीं जाती बाजारों में। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो जी बता घर बैठे करना क्या। ये कुछ सवाल आता है, इसको भी देख लीजिए। ये कहती हैं कि दीन के कामों में भी मीटिंग्स साथ होती हैं, इनको करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है जब सब ने मिलकर फैसला करना। मैंने अभी आपको सुना दिया, अपने अमल से सुना दिया कि जब भी कोई ऐसा मौका औरतें अलग बैठे मर्द अलग बैठे और अगर एक ही कमरा है तो ऐसी ओट में बैठे, कभी होता है हमें, जैसे मिसाल है कि किसी ऑफिस में जाना पड़ता है काम के लिए, कोई वकील है, कोई कोई भी ऐसे होते हैं ना जिंदगी में, कोई आपका प्रॉब्लम है, बिल्कुल सीधा आमने सामने नहीं बैठे हैं। मैं एक आध दफा ऐसे ऑफिस में गई हूँ कभी जहाँ भी जरूरत पड़ी है, तो आप वहां से मैं कुर्सी लेके ना तो अपना रुख इसे कर देती हूँ, जैसे वो आपके सामने यही टेबल है, अगर वो इधर बैठे हैं तो कुर्सी सामने थी ना, तो उस कुर्सी को लेके मैंने इधर करके मैंने उधर मुंह कर लेना है, और आमना सामना मतलब फेस टू फेस नहीं बैठना। और याद रखिए कि खैर कभी भी शर के तरीके से नहीं आएगी। आज ये जो बाज़ार ग्रुप्स होते हैं, मुस्लिम ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं माशाल्लाह हमारे यूथ में, उसमें भी इसकी ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा क्लोज हो जाता है इंसान, रात दिन मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसिस करें, हमने ये भी काम किया है अल्लाह के हुक्म से, इसके अंदर जाके भी देखा हुआ है कि इस सिस्टम को कैसे बेहतर करने की ज़रूरत है। हमने खुद एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में, एक दफ़ा हमारे साथ ग्रुप थे एक दो, तो हम सब ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जहाँ स्कॉलर्स को बुलाया, और माशाल्लाह काफ़ी कुछ हुआ, मैंने उसमें भी बहुत कुछ सीखा। तो बहरहाल जो भी है उसके अंदर आप मतलब तरीके से बात करें। क्या दामाद महरम है? जी बिल्कुल महरम है, क्यामत तक के लिए महरम है, यानी वो उसकी जिंदगी, क्यामत कह लें या उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक महरम है। आपकी बेटी से उसका रिश्ता टूट भी जाए, बेटी आपकी फौत भी हो जाए, तो दामाद जो वो महरम ही रहता है। लेकिन याद रखिए दामाद कब बनता है? मंगनी के बाद। अब उसको अंगूठी पहनानी या प्यार दें, दामाद बनता है वलीमे के दिन कह लें, निकाह हो गया, शादी हो गई है, निकाह कह लीजिए, यानी शादी के बाद माँ का भी पर्दा उसी दिन खुलता है और बेटी का भी उसी दिन खुलता है। ठीक है, हमारे अपने भाई की शादी माशाल्लाह डॉक्टर फजल अली साहब की बेटी से हुई थी, तो मेरा ख्याल है एक 6 महीने साल के करीब मंगनी रही थी, सारे मराहल में उनकी बीवी ने हमारे भाई को नहीं देखा। इवन हम एक दफा यहाँ से सऊदी अरब गए, वो सऊदीया में रहते थे तब, तो वहां वो लोग भी आए हुए थे, वो कितना सफर करके, हम कितना सफर करके आए। अब हमने उनसे पूछा इस बात को कि क्योंकि मंगनी हाँ हो चुकी थी, उससे पहले जब हाँ नहीं हुई थी तो उन्होंने पूछवाया था मेरे वालिद से कि अगर आपका बेटा हमारी बेटी को देखना चाहता है तो कर ले, तो आपको था कि पहले दौर, पहला इतना पुराना दौर भी नहीं है, सच्ची बात है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं, लेकिन जरूरत नहीं महसूस हुई। अबू ने कहा भाई को पूछा, उसने मान गया, ठीक है हाँ हो गई। उस हाँ होने के बाद हम लोगों ने प्लान करके, हम भी इधर से उम्रे पे गए मक्का, वो रियाज से इधर आए थे। अब जाहिर है कि हमारी उनकी सबकी पहली मीटिंग थी, हमने भी उस वक्त अपनी होने वाली भाभी को देखा, भाई भी साथ था। पहली चीज हमने उस वक्त ये पूछी कि क्या आज वो देख सकता है, तो अंकल ने कहा नो, अब इसका वक्त नहीं है, अब वो तब देखेगा जब निकाह होगा। फिर उनकी बीवी आई हुई थी, तो क्या वो आ सकती है अंदर? बिल्कुल नहीं आई। मेरे अब्बू क्या मेरी होने वाली भाभी को देख सके? नहीं देख सके। अल्लाह की तिलका हुदूदुल्लाह, मैं और आप कैसे इसमें सर पटकें? तो क्या कयामत आ गई? फिर मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब शादी इनकी उसके बाद हो गई, पाकिस्तान आए ये लोग शादी वलीमा, तो वलीमे के अगले दिन जब वो सुबह अपनी बेटी को मिलने आए, तो उस दिन पहली दफा मेरे सामने फिर वो जो आंटी जी हमारी, उन्होंने कामरान को देखा और प्यार दिया, और वो भी इतना ही शर्मा रही थी जितनी बरीरा शर्मा रही थी। तो अच्छा लगता है मोहब्बत के रिश्ते, हम तो गले तक लगा लेते हैं, और पता नहीं क्या कुछ खुराफात दिमागों पर रखी हुई हमने। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। ये एक सवाल है, क्या हिजड़े से पर्दा करना है? बिल्कुल करना है। इसके बारे में हदीसें मैंने सुनाई नहीं आपको, बहुत सारी हदीसें, अगर आप चाहें तो बाद में आपको नोट करवा दूं, जिसका खुलासा यह है कि मदीना में एक हिजड़ा रहता था और आमतौर पर औरतों के घरों में आ जाता था। औरतें ये सोच के कि इससे पर्दा नहीं है, उसको आने जाने देती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो शख्स जो था बातें कर रहा था, तो एक जगह किसी जंग की बात हुई, तो उसने चढ़ के ये बात कह दी कि अगर गसान वालों के साथ हमारी बात हो गई और तुम जीत गए, तो वो शाह गसान की बेटी को जरूर लेकर आना, और उसके हुस्न की तारीफें शुरू कर दी। अल्लाह के नबी के कानों में बात पहुंची, तो आपने उसको डांटा, वहां से निकलवाया, फिर आपने उसको मदीना से भी निकलवा दिया, और आपने कहा कि इनसे पर्दा करो। पहले दौर में जो हिजड़े थे वो आराइश कर लेते थे, मेहंदी लगा लेते थे, कप रंग लगाते थे। जब ये हुक्म उतरा तो मदीना में कहते कि एक हिजड़ा था कि उसने अपने हाथ जाके तो दीवारों के साथ छील के खून निकाल लिया था कि मेरे हाथों पे तो रंग लगा हुआ है, और हुक्म ये उतर गया कि रंग नहीं लगा सकते, तो हिजड़ों से पर्दा होगा। ठीक है, ही एंड शी जो मिडल यूनिसेक्स होते हैं जिसमें दोनों किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी
जी उस्ताद जी, चेहरे की बात में शायद यंग बच्चियों के लिए इंशाल्लाह ताला से यूजफुल भी हो जाए बात, ये चेहरे के ये व्हाट्सएप की तस्वीरें भी हमारे क्लोज के बहुत लोग हैं, रिलेटिव भी आप कह लें, कि किसी ने फेस लग अभी यानी उन्होंने फिर ये कह के बात खत्म की कि ये फेस हमारी बच्ची का बॉडी में बिल्कुल, मुझे आपसे इज्जत के साथ कहती हूँ, ओरियन बॉडी और फेस ऊपर नजर आ रहा उस बच्ची का, घर वालों ने इतनी ये बात शर्मनाक हद तक फैली, अभी जो व्हाट्सएप पे तस्वीरें भी लगती हैं कि कि उन्होंने फिर ये कह के बात खत्म की कि ये हमारे बच्चे का बॉडी नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने फिर ये भी कहा कि किसने देखा उसका बॉडी नहीं है, मतलब सिर्फ फेस लगा के उसका नीचे पूरा
देखिए,
बॉडी।
फैज लम तस्तही फस नमा शेता, अल्लाह के नबी ने फरमाया फैज लम तस्तही फस नमा शेता, जब तेरे अंदर हया ना रहे तो तू जो मर्जी कर। हदीस में आता है कि जब इंसान जिना करता है या कोई ऐसी बदकारी करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल कर बाहर खड़ा हो जाता है, उसको फिर कहता है अब जो मर्जी कर ले, और अगर इस हाल में वो मर जाए तो वो कुफर की मौत होगी, ईमान नहीं होगा। कहाँ तक खुद को दिखाएंगे, कहाँ तक, आखिर क्या होगा? ये कहती हैं कि चेहरे के पर्दे पर एतराज़ करने वालों का एक सवाल ये भी है कि हज के दिनों पर भी तो औरतों को चेहरा ढांपने की इजाज़त नहीं, बराए मेहरबानी वाजे करें। तो ये बात भी मिसकॉन्सेप्शन है, चेहरा हज में भी ढकता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना अमल बताती हैं कि जब हम हज के लिए गए तो काफ़िले पे सवार थे, कौन होता था वहाँ? कहती जब हमारे करीब से कोई काफिला गुजरता तो हम अपनी ओढ़नियों से चेहरा छुपाते। तो फी ज़माना, आज अगर आप हज पे जाते हैं, आप उमरे पे जाते हैं, कितने लोग वहाँ होते हैं तो आप पर्दा करेंगे। और इस पे मैंने अलग से एक दफ़ा आपको पहले बताया था कि बस निकाब उंडेलने वाली कैफियत कर लें, ये ना करें कि जैसे हम सिली भी निकाब पहनते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल है, लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हज के दिनों में पर्दा नहीं है, ये गलत चीज़ है। फिर इसके बाद ये कहती हैं कि सजा के बारे में अगर किसी के पास गवाह ना हो तो सजा के दुर्रे उसी को लगेंगे या वो खामोश रहे? खामोश रहे, असल हिकमत ही है चुप, कीप क्वाइट, बिल्कुल नहीं बोलना। दोस्त ने अपने दोस्त की कोई काम, बेर शोहर की कोई बातें सुनाई नहीं है, किसी को अपनी बीवी के बारे में, कीप क्वाइट। इस्लाम का सिर्फ एक मिजाज है कि खामोश रहो। हदीस में आता है कि जिस शख्स के जुर्म पे, गुनाह पे अल्लाह ताला ने रात को पर्दा डाला, वो सुबह उठ के लोगों को अपनी बातें सुनाता है तो वो अल्लाह के गजब में अपनी बुराइयां, यही ना, रातों को फिल्में देखी, बनाई तस्वीरें, कल अगले दिन फेसबुक पर डाल के सबको दिखा दी। मुझे समझ नहीं आता कि हमने खुद को बेचना है, बिकाऊ चीजें लोग दूसरों को दिखाते हैं, और क्या हम इतने खूबसूरत हैं? कभी अपने महरम रिश्तेदारों को भी नहीं दिल करता, सच्ची बात है, ऐसी कोई दे, हम कैसे हैं? कोई बहुत खूबसूरत है क्या? बड़ी अच्छी हमारी तस्वीरें आती हैं, और आती भी होंगी, तो क्या हम दूसरों को दिखाएंगे कि लो हमें देखो? तो बहरहाल अल्लाह ताला इस पे हमारी आसानी करे। ये कहते हैं कि इफ़ यू लिविंग विद नॉन महरम्स इन योर हाउस, नॉन महरम के साथ अगर आप अपने घर में रहते हैं, मसलन आपके ब्रदर्स इन लॉ हैं, व्हाट्स रूलिंग द एग्जाम विद मे देम, इट इज़ अलाउड टू वियर मेकअप एट द होम। जी बहुत अहम सवाल है, वही सवाल है जो बीच में आ गया था कि अगर घर में आपके और भी लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो पाबंदी क्या होती है? सबको पता है ना क्या पर्दा करती हैं। अब किचन में मिसाल है, मर्द हैं उस वक्त काम कर रहे हैं, आप वो घर में, या आप काम कर रही हैं, अब ऐसे गैर महरम में उनको पता है भाभी किचन में है या फलां किचन में, तो मर्द सलाम करके आएंगे। अगर इस इस्तेज़ान पे अमल हो जाए ना कि इजाज़त लेके आना, सलाम करना, खंखारना, लोगों से इजाज़त लेनी, आप बड़ी चादर रखें घरों में। हम लोग जब करते हैं पर्दे, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कि आप सोचेंगे यहाँ रहते हैं तो हम ये बातें कर रहे हैं ना कि यहाँ तो कोई है नहीं, ऐसी ऐसी फैमिलीज के साथ अल्लाह के हुक्म से ताल्लुक है हमारा, अपना भी, हमारे अपने घर में पर्दा भी करते हैं लोग, सब कुछ है, दावतें भी होती हैं, एक एक घर में कितने तरीका कार्य होता है कि मर्दों को पहले ही पता होता है कि ये भाभी मुझसे पर्दा करती है, मेरी बीवी मेरे भाई से पर्दा करती है, वो बड़ी चादरें उन्होंने रखी होती हैं घर में, किचन में काम कर रही है, मर्द जाते ही नहीं उठ के सरेआम ऐसे भाग के, और अगर कोई एक आए भी दूसरा आता है तो बड़ी चादर है उसके साथ आप अपने आप को छुपा सकते हैं। खाना रख दीजिए, फिर कहा जी मर्द ले ले, थोड़ा बहुत घर के मर्दों के अंदर, घर में अब ये भी नहीं क्या पूरा वक्त अबाया और निकाब पहन के फिरेंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। आपको मैंने थोड़ा सा इस पे इशारा दिया था दौरे कुरान के दौरान, घर में अगर आप रहते हैं इस तरह के हालात में तो पहली बात है कि आप कोशिश करें कि अपना एक्सपोजर ना रखें, यानी ऐसे कपड़े जिसमें ज्यादा एक्सपोजर हो या मेकअप किया हो, ऐसी चीजें, तो फिर आप ऊपर मोटी बड़ी चादर रखें और पर्दे के साथ लिहाज के साथ तरीके से सर्विंग भी करें, खाना भी पकाएं, और सामने आमने बैठने के बजाय साइड पर बैठ जाएं। अब ये कोई इतनी बड़ी मसले तो नहीं, यहाँ तो मैंने देखा हर बंदा वैसे अपने हिसाब से खाता है, पहले दौर में होता था सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाना है, एक ही टेबल पे बैठते हैं तो खाना खाते हैं, आजकल तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो जो बचेगा अल्लाह ताला उसको जरूर बचाएगा, और फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, बिल्कुल फोहड़ भी नहीं बनना, बदतमीज भी नहीं बनना, ये भी नहीं करना। एक बहुत बड़ा इतराज लोग कहते हैं जी हमारी सासें कहती हैं ये घर में फूट डाल रही हैं, अब तो मेरे बेटे घर में आ ही नहीं सकते, झूठ है। आप अपने बेटे से प्यार करती हैं, आपका बेटा आपके पास बैठने के लिए आया बैठे, आप ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी बहू होने के नाते, अच्छी बहन होने के नाते क्या करें? आपको पता है घर में कोई आया हुआ है, कजन आए हुए, कुछ अच्छा सा ट्रेस जाए, मर्दों की इज्जत करें, खिदमत करें, आप चाय बनाएं, खान रखें, जो भी है, किसी के हाथ सलाम करके नौ करके हाल भी पूछें, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई, साथ ही मियाँ जी से कहेंगे ये ट्रे दे दें, ठीक है घर में सब ठीक है, मेरा सलाम दे, बस ठीक है। ये भी नहीं कि सर तोड़ मुंह थाड़ और इस तरह की बातें कर देनी कि अब औरत बात भी नहीं कर सकती और इस तरह भी नहीं, ये भी गैर मारूफ तरीका है और इसको भी लेकर हम लोगों ने इस्लाम को बहुत ही ज्यादा जो वो मुश्किल कर दी है। देखिए वही बात है ना कि हम उनको चिढ़ना चढ़ाएं या हम उनको टॉन्ट ना करें, तंज ना करें। आप ये सोच लें कि उनकी बेटी की बजाय अगर मेरी बेटी ये होती तो वो ऐसा करती तो मैं उसके साथ क्या मामला करती। और अच्छे तरीके से देखिए, तनकीद से बेहतर है कि उनको तालीम दें, इल्म का उनके तक पानी दें। और ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं, जैसे एक ऐसी जगह थी कि सिस्टर ने कहा कि मेरा बेटा किसी लड़की में इंटरेस्टेड है तो मैं क्या करूं, वो कहते हैं मैंने उधर शादी करनी, अभी दोनों पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आपने क्या सोचा, कहती कि हमने उस बच्चे को समझाया लेकिन वो कहता है कि अम्मी हम कोई गलत बात नहीं करते, हम आपस में हदों में हैं व्हाटएवर, लेकिन मेरा प्लान है कैसे करें। खैर किस्सा मुख्तसर के मैं भी वहीं थी तो मैंने कहा अच्छा कल दरस आप उस बच्ची को बुलाएं, ऐसे बुला लें, वैसे भी वो कभी कभी आना जाना था। वो बच्ची आई, मैंने अपने अंदाजे से देखा अच्छी बच्ची है, लेकिन चूंकि कुरान नहीं है तो जो आम सिंपल सोचिन दर्स था, बाद में कहने की मैंने तो आज जिंदगी में पहली दफा ये बातें सुनी है। मैंने उनको बैठ के बताया, मैंने कहा देखें आपको बच्ची अच्छी लग रही है, अपने खानदान कल्चर की है, मुस्लिम पाकिस्तानी है व्हाटएवर, आप इस बच्ची पे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे को कह दें कि देखो ठीक है तुम्हारे साथ पढ़ती है तुम्हें अच्छी लगी ना, अब इसके आगे तुम खामोश हो जाओ, पढ़ने में तवज्जो दो, इस बच्ची का भी तज़किया करें, बेटे का भी करें, उसको 5 वक्त की नमाजों से अब मस्जिद पे लेके आए और इस बच्ची को लाए, साल 2 साल के बाद अगर आप देखते हैं कि दोनों ठीक है तो कर दें शादी। अब ये भी तकलीफ की बात है कि शादी से पहले तो हर तरह की छुट्टी है, पढ़ना भी साथ, रातों को जागना भी साथ। इस पे थोड़ी सी बल्कि एक बात रह गई, मैंने जानकर नहीं की थी लेकिन जिक्र आ रहा है तो कर दूं, जैसे को एजुकेशन होती है, अब को एजुकेशन के बारे में जो मसाइल माँ बाप को है, क्या जायज़ है बच्चों को भेजे कि ना भेजें। तो पहली बात तो पीछे बात की थी मैंने कल, बल्कि कल शायद जिक्र नहीं हुआ, एनीवे एक अमेरिका के एक स्कूल की रिपोर्ट ये थी, साइकोलॉजिस्ट लोग ने ये बताया कि लड़कों का माइंड लेवल, उनका लर्निंग स्टाइल लड़कियों से बिल्कुल फर्क होता है। उन्होंने अब ये बात साबित कर दी है कि अगर एक ही क्लास में लड़कियां लड़के बैठे तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल है दोनों को साथ लेकर चलना, स्ट्रेटेजीज फर्क होती हैं लड़कियों को लड़कियों से पढ़ाने की। लिहाजा अगर आप अच्छा तालीम का निज़ाम चाहते हैं तो लड़कियों को पढ़ाने वाला वो टीचर हो जिसने लड़कियों को पढ़ाना सीखा और लड़कों को, तो इससे आपका सिस्टम बदल जाएगा। हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हम बेचारे बीच के ना इधर के ना उधर, ना हमें मॉडर्न लोग कबूल करते हैं ना हमें दीनदार लोग कबूल करते हैं। अब आपकी बच्ची जाती है को एजुकेशन में, अब वो 10-12 साल की है या वट एवर, आप याद रखिए जो बच्चे को एजुकेशन में पढ़ते हैं ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं माँ बाप के, हर वक्त आपके इन पर नजरें लगी हुई हैं, किधर गए थे क्यों गए थे, लड़की हो या लड़का दोनों तरफ है। हम क्या कहते हैं, फिक्र है। अब मिसाल है कि आपकी बच्ची ओनली गर्ल्स स्कूल में जाती है, अब बच्चियां जहां पढ़ती हैं किसी दिन असाइनमेंट करना है, वो कहती है मैंने दोस्त के घर जाना है, आप कहेंगे चलो जाओ, देख आएंगे एक दफा मिलके, माँ अच्छी है चलो मेरी बेटी है 2 घंटे बाद ले आओ। आपकी बच्ची को एजुकेशन में पढ़ती है और वो कहती है मैंने असाइनमेंट करने जाना है लेकिन जिसके घर जाना है वो लड़का है, क्या आप इजाजत देंगी? इस वक्त हम रिलीजियस हो ना हो हम एशियन बन जाते हैं, कभी भी नहीं देंगी। अब आप बच्चे को बेटी को कहेंगी नो यू कैंट गो, तो क्या वो खुश होगी कि नहीं, वो क्या कहेगी कि बहुत अच्छी बात है मम्मी आपने मुझे को एजुकेशन में डाला, वो कहेगी अम्मी यू आर सो रिजेक्ट यू आर सो मीन, क्या हम वहां बैठ के गंदी बातें करेंगे? नहीं। अब बच्चियां अकेली हैं, सब मिलते हैं, कोई स्कूल का ट्रिप जाता है, आप कहते हैं चलो एक दो माएं साथ चली जाती हैं, जाओ बेटा चले जाओ कोई बात नहीं, होता है फीस माना। अब को एजुकेशन है लड़के लड़की हैं तो आप अपनी बच्ची को भेजते हैं। याद रखिए जिनके बच्चे को एजुकेशन में पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत सप्रेस्ड है, क्योंकि ना हम उनको बड़े हजम कर सकते हैं ना कर सकते हैं। मैंने देखा रोज लान तान करके बच्चियां मांस के लानते सुन के घर से जाती हैं, भेज तो दिया डाल तो दिया यूनिवर्सिटियों में लेकिन अब वो ये ठीक करो वो करो, वो बच्चियां फिर उसको अफोर्ड नहीं करती, तो क्या इतनी मुश्किल है? बात लोग कहते हैं नहीं देखे ना को एजुकेशन में पढ़ी हो तो बच्चियां बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं, बहुत पुरएतमाद होती हैं, तो आप बताइए क्या वो पुरएतमाद होती हैं तो उस एतमाद से कोई ज्यादा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कोई चीज 100% गलत नहीं होती। इवन आपने देखा कुरान में शराब के बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा कि नफा इसका इसके नुकसान से थोड़ा है, को एजुकेशन का हो सकता है 1% फायदा भी हो। और याद रखिए हर बंदा को एजुकेशन में पढ़ने वाला करप्ट नहीं होता, सारे लड़के लड़कियां जो ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाती हैं वो फ्लर्ट ही नहीं कर रही, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखिए, इतनों में अगर थोड़ा सा भी इस चीज में आ गया तो फिर ये चीज जो है वो गलत होगी। तो मुमकिन हद तक अगर आप लोग अलग कर सकते हैं तो आपके अपने बच्चे खुश रहेंगे, आप उनके ऊपर एतमाद भी करेंगी, आप उनसे मोहब्बत भी करेंगी। ये एक आर्टिकल है, ये लिखा हुआ है कि मेकअप का नुस्खा है कीमिया, यानी हम चाहते हैं ना कि हम अच्छे लगें खूबसूरत लगें, यही सारी बातें हो रही हैं जीनत की, तो ये लिखती हैं کہ صدیوں سے ہی خواتین کو سجنے سنورنے کا اور سب سے منفرد نظر آنے کا شوق رہا ہے، فطرت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ خیر، خاص کر تقریبات میں جانے کی تو ہفتوں پہلے تیاری شروع کر دیتی ہیں، خاص طور پر ان تقریبات میں جن میں بڑے بڑے لوگ یا پھر مشہور شخصیات نے آنا ہو، پھر تو خواتین کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ میں سب سے خوبصورت اور منفرد نظر آؤں۔ آپ کی بات تو نہیں ہے نا، یہ آپ تو ایسے نہیں ہے نا، میں دیکھتی ہوں آپ میں سے کس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، کچھ خاموش ہیں ہاں، وہ مسلط پسند ہے، ہوتی ہے یہ بات اندر، یہ الگ بات ہے کہ اس کو آپ کس جگہ پہ اپنے جذبات کو فلفل کریں۔ بہرحال، تو آج میں آپ کو خاص خاص تقریبات میں شرکت کے لیے چند ٹپس بتاتی ہوں، جن پر عمل کر کے آپ کسی بادشاہ کے سامنے بھی حاضر ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو سب سے خوبصورت اور اچھا محسوس کریں گی۔ کوئی بھی فنکشن ہو تو آپ فوراً تیاری شروع کر دیں تاکہ بہتر نتائج ہوں۔ تو سب سے پہلے سکن پر توجہ دیتے ہیں، کیا کرائیں گے سکن کا؟ فیشیل، مساج اور کنڈیشننگ اور بلیچ اور کیا کچھ۔ سب سے پہلے سکن، سب سے پہلے کلیننگ اینڈ کلینزنگ کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خوب روئیں اور خوب آنسو بہائیں۔ وہ جو آپ کے آنسو گریں گے اس سے آپ کی بہترین کلینزنگ ہوگی، اس سے اچھا کوئی اور کلینزنگ ملک نہیں ہے۔ تو ندامت کے آنسو بیسٹ کلینزر ہے۔ اب مائسچرائزنگ کی باری آتی ہے، اس کے لیے آپ نماز کی پابندی کریں تو ہر نماز کا وضو بہترین مائسچرائزر ثابت ہوگا۔ یہ تیاری تو آپ کو ہر روز کرنا پڑے گی، اس لیے آپ اپنی عادت بنا لیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اس سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور فنکشنز کے دن تک آپ کے چہرے پر تازگی اور چمک آ جائے گی۔ اب میک اپ کی طرف چلتے، چلے یہ کچھ خرچہ تو بچ گیا نا فاؤنڈیشنز کا، وہ کریموں کا، ہاں خیر، آپ میک اپ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے خوش اخلاقی کی بیس لگائیں، ٹھیک ہے؟ کیسی بیس لگانی ہے؟ خوش اخلاقی، اسمائلی فیس سب سے زیادہ گلو کرتا ہے، یقین کریں۔ اور بعض ہنستے صرف اس لیے نہیں کہ بیس میں لائنیں پڑ جائیں گی، اتنی موٹی بیس لگائی ہے تو ہنستے ہیں، وہ جہاں جہاں لگی ہوتے ہیں وہ صاف تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح کا پلاسٹر آف پیرس نہ کریں منہ پہ کہ آپ ہنس بھی نہ سکے، رونے میں آنسوؤں کا مسکار ہے اور ہنسنے میں بیس خراب ہوتی ہے، اس لیے دلہن کو کہتے ہیں نہ ہنسنا نہ رونا، ہاں بت بن کے بیٹھی رہنا۔ تو بہرحال کیا کرنا ہے آپ نے، ہنس چہرے کے اوپر اسمائل دینا ہے آپ نے، خوش اخلاقی کی بیس لگائیں، چہرے پر نرمی کی سٹک لگائیں، یقین کریں یہ خوبصورتی ہمیں بہت کم پتہ ہے، بعض دفعہ ہم پورا میک اپ کر کے بھی خوبصورت نہیں لگتے، ڈمی لگتے ہیں، بڑے لگتے ہیں اپنی عمر سے، بھوت لگتے ہیں، کالی سے آنکھیں کر کے پتہ نہیں ہم کیا بن جاتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ خوبصورتی کے نام پہ بھی ہم کبھی نہیں خود سے پوچھتے کہ ہم لگ کیا رہے ہیں، تصویروں میں شاید کوئی اچھا لگتا ہے اور ریئل میں تو ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں، نرمی، آپ اپنے فیچرز نہیں چینج کر سکتے لیکن آپ اپنے ایکسپریشنز چینج کر سکتے ہیں۔ تو چہرے پہ نرمی جب آتی ہے تو پھر اس سے خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور آنکھوں میں حیا کا مسکارا اور آئی لائنر لگائیں، یہ ملتا کہاں سے بھائی دوے؟ اور اس کے بعد ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لپسٹک لگائیں۔ میک اپ تو ہو گیا، اب سر پر کیا کرنا ہے، ہیئر سٹائل کیسا بنانا ہے؟ سر پر عاجزی کی کنگھی کریں، اور اب سب سے اہم بات جو ہم کرتے ہیں وہ ذرا مشکل ہے، وہ ہے لباس اور زیور کی تیاری۔ اب تیار تو ہو گیا، پہننا کیا ہے؟ تو سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے، اور اس کے ساتھ میچنگ کیا ہے، ایمان کا دوپٹہ۔ پاؤں میں جوتی میانہ روی کی چال پہنے، یعنی ہیل نہ پہنے، سافٹ جوتی پہنے۔ کہتی ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ جیسا لباس کسی کا نہیں ہوگا، اور آپ کی سب سے بڑی خواہش جو یہ ہے کہ آپ منفرد اور اعلیٰ دکھائی دیں، تو اس سے آپ کی یہ خواہش پوری بھی ہو گئی۔ ہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ آپ اسمارٹ لگیں، کیونکہ اچھا لباس سمارٹ لوگوں ہی کو سجتا ہے۔ اب کیا کریں، موٹاپے کا کیا علاج ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حرام کی اور رشوت کی کمائی چھوڑ کر حلال کھائیں، چاہے تھوڑا ہی کھائیں۔ اور اب زیورات کی باری آتی ہے، کیونکہ زیورات کے بغیر تو عورتوں کی تیاری ہی ادھوری ہے، اس لیے آپ سب سے قیمتی زیور یعنی سادگی کا زیور پہنیں۔ اس قیمتی زیور سے آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگ جائیں گے، تو اب آپ تیار ہیں سب سے بڑے فنکشن یعنی حشر کے دن، سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کا دن آئے گا، تو انشاءاللہ آپ سب کامیاب اور خوب سب سے زیادہ کامیاب اور خوبصورت نظر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مس ورلڈ کا خطاب دے کر آپ کو برتر کر لے۔ تو اب آپ ہی بتائیں کیسی لگی یہ تیاری، امید ہے کہ اب تھوڑی سی محنت کر کے آپ اپنے آپ کو اس بڑے فنکشن کے لیے تیار کریں گی، باہر نکلتے وقت پردے میں نکلیں گی ورنہ لوگوں کی تپتی نگاہوں سے آپ کالی ہو جائیں گی۔ سورج کی لائٹیں جو ہوتی ہیں وہ کالا کر دیتی ہیں نا بندے کو، تو یہ بھی کرتی ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت، کوئی کمی نہیں ہے اس دین میں۔ اور آپ کو دین کے نام پہ بھی کوئی اتنے اجڑ اور بیوقوف بن کے نہیں لوگوں میں پھرنا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ بس اب سارے جذبے ختم، پھینک دو سارا میک اپ کہ ہم جا کے جنت میں لیں گے، और सारे जेवरात दे दो किसी को, ऐसा नहीं है। जगह पे यूज करें चीजों को। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? औरतों में औरतों का स्लीवलेस पहनना, तकवा बताऊं कि फतवा बताऊं? तकवा तो आपको कभी इजाजत नहीं देगा, फतवा हो सकता है आपको इजाजत दे दे। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन बातों पे अमल की तौफीक दे। ये जो बात आप लोगों के जहनों में है कि औरत औरत के सामने किस हद तक जा सकती है या कितना उसका पर्दा है या किस तरह के हालात हैं, एक दो रिवायतें आपके सामने और रख देती हूँ जिससे मज़ीद इंशाल्लाह आपका शरह सदर भी होगा। एक सवाल ये होता है कि स्विमिंग पूल्स में औरतों का औरतों के सामने जाना, वहाँ औरतें दूसरी भी होती हैं तीसरी भी हैं, तो इसके बारे में एक रिवायत सुन लीजिए, शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा को लिखा, मैंने सुना है कि मुसलमानों की बाज़ औरतें गैर मुस्लिम औरतों के साथ हमामों में जाने लगी हैं। हमाम समझ गए ना, जहाँ शावर लिया जाए, तो आज के दौर में आप इसको कह सकते हैं कि ये स्विमिंग पूल है। हालांकि जो औरत अल्लाह और जामे आखरत पर ईमान रखती हो इसके लिए हलाल नहीं कि इसके जिस्म पर इसके अहले मिल्लत के सिवा किसी और की नज़र पड़े। ये ख़त जब हज़रत अबू उबैदा को मिला तो वो एकदम घबरा कर खड़े हो गए और कहने लगे, खुदाया जो मुसलमान औरत महज गोरी होने के लिए इन हमामों में जाए इसका मुँह आखरत में काला हो जाए। तो ये इब्ने जरीर में और बहकी और इब्ने कसीर ने इसको नकल किया, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें ये समझ लीजिए कि एक औरत बिल्कुल नेकेड या बिल्कुल ऐसा ड्रेस पहन करके जिसको आप कपड़ा भी ना कहें तो फिर दूसरी औरतों के सामने भी ना जाए। एज इट इज़ स्विमिंग मना नहीं है, आप कर सकते हैं अगर औरतों में, लेकिन फिर उस वक्त आपके जिस्म पे ऐसा कपड़ा ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें आपके जिस्म के ऊपर दूसरों की नज़र ना पड़े इस तरह से कि देख के रग़बत पैदा हो। कई तरीके इसके हो सकते हैं, अबाया पहन के स्विमिंग कर लें, जिस चीज़ की आप आदत डाल देते हैं वो आदत होती है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर जो चीज़ है वो ये है कि ऐसी औरतें जो आपकी बातें बाहर दूसरों को भी जाके बताएं उनकी बात को दुरुस्त नहीं है। फिर एक और चीज़ है ये दुपट्टे का जो इशू होता है, औरत औरतों में दुपट्टा लेके ना ले, स्लीव्स आम रखे, दूसरी कौन सी रखे, किस तरह से, तो इसके बारे में भी एक हदीस सुन लीजिए। एक रिवायत हज़रत आयशा बताती हैं कि औरतों ने बारीक कपड़े छोड़कर अपने मोटे मोटे कपड़े छांटे और इसके दुपट्टे बना लिए। कब? जब ये आयत उतरी के वल यद्रिब न बिखुमरी हिन्ना अला जुजुबी हिन्ना, यानी अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाल लो। इसको सुनकर औरतों ने अपने सीनों को छुपा लिया। अंसार की औरतों में कोई एक भी ऐसी ना थी जो इस आयत को सुनकर अपनी जगह पर बैठी रही हो। हर एक उठी और हर एक में से किसी ने अपना कमर पट खोला, कमर पे जो पटका सा बांधते हैं अरब लोग, और किसी ने चादर उठाई और फौरन इसका दुपट्टा बना लिया और ओढ़ लिया। दूसरे दिन सुबह की नमाज के वक्त जितनी भी औरतें मस्जिद नबवी में हाजिर हुई सब दुपट्टे ओढ़े हुए थी। हज़रत आयशा इसमें यह भी कहती हैं कि सब अपने मोटे मोटे कपड़े छांटे और इनके दुपट्टे बना लिए। फिर इसी तरह से इस बारे में एक और बात आती है और वो क्या है, दाहिया कल्बी कहते हैं कि अल्लाह के नबी के पास मिस्र की बनी हुई बारीक मलमल आई, कबाती बोलते हैं उसको, यानी किप्ती लोग बनाते हैं उसको बारीक मलमल, जैसे हमारे यहाँ शायद ढाका की मारूफ है जिसमें सी थ्रू होती है ऑलमोस्ट। आपने इसमें से एक टुकड़ा मुझे दिया और फरमाया कि एक हिस्सा फाड़ कर अपना कुर्ता बना लो और एक हिस्सा अपनी बीवी को दुपट्टा बनाने के लिए दे दो, मगर इनसे कह देना कि तज अल तहतहु सौबन ला युसिफहा, इसके नीचे एक और कपड़ा लगा लें ताकि जिस्म की साख्त अंदर से ना झलके। यह अबू दाऊद के लिए रिवायत है किताबुल लिबास में। तो वही बात है कि जितना तकवा बढ़ता है उतना इंसान छुपता है। अब देखिए कि मिसाल है कि ये मैंने आपके सामने स्काफ लिया हुआ है ना, अब इसमें अगर आप देखें भी तो सर से लेकर यहाँ इस जितना हिस्सा आपको इधर टेबल पर मेरा दिखता है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दिखती ना कि जिससे एक इंसान अनकंफर्टेबल फील करे। अब ये एक मारूफ तरीका है, अगर इस तरह मेरा ये रवैया आपको अच्छा लगता है, कभी कभी घर में काम कर रहे हैं, बेटी है घर में, बहू है, बहनें आपस में, आप इसकी जगह आप दुपट्टा उतार लेते हैं, दुपट्टा भी नहीं, इट्स ओके। असल हुक्म पे नजर रखिए कि औरत भी अपनी शहवत दूसरी औरत को नहीं दिखा सकती। अगर आप इस हुक्म पे रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे आपके जो मसाइल हैं इस सिलसिले के हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो बातें हमने इस पढ़ी सुनी और जो अभी तक नहीं भी पढ़ सकी उस पर अमल की तौफीक दे। ये अहकामात नाजिल करके अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया। एक ये सवाल आया, क्या मालिश करवा सकती है औरत के नहीं, यानी औरत से औरत मालिश कह लीजिए या आज के दौर में मसाज है, सेम हुक्म है जो आपको पीछे वैक्स के बारे में बता दिया, आप मसाज करवा सकते हैं। आप ऐसा कोई कपड़ा अपने जिस्म पर पहन ले कि जिसमें कम से कम आपका नाप से लेकर घुटनों तक का हिस्सा जो है वो कवर्ड हो, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बीमार करे ही ना। और कोई ऐसी मजबूरी, अब आप कहें कि अच्छा अगर कमर का ऑपरेशन होना हो या बच्चा पैदा होता है तो वो तो फिर एक मजबूरी की बात है ना। फिर एक छोटी सी बात है कि जिस रिश्ते में शुबा पड़ जाए कि वो महरम है कि नहीं, उससे भी पर्दा करना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है और अबू दाऊद में भी है। हज़रत सौदा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, इनका एक भाई लौंडी ज़्यादा था, यानी इनके बाप की लौंडी से बतन से पैदा हुआ। उसके मतलब हज़रत साद बिन वक्कास को उनके भाई उतबा ने वसीयत की कि इस लड़के को अपना भतीजा समझकर इसकी सरपरस्ती करना, क्योंकि वह दरअसल मेरे नुतफ़े से है। ये मुकदमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने हज़रत साद का दावा ये कहकर खारिज कर दिया कि बेटा उसका जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ, रहा जानी तो इसके हिस्से में कंकर और पत्थर है। लेकिन साथ ही आपने हज़रत सौदा से फरमाया कि इस लड़के से पर्दा करना, अपनी बीवी को मना कर दिया, क्योंकि ये इत्मीनान नहीं था कि क्या वाकई वो बच्चा इन्हीं का है या किसी और का। आप इस बारे में 101 सवाल भी पढ़ लेंगे तो आगे फिर एक और खुल जाएगा। इसके बारे में बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे वो अमल करवा जो बेहतरीन भी हो, आसन दर्जे का हो, और मैं उसके ऊपर अमल भी कर सकूं, और फिर मेरी कमी कोताहियों को माफ कर दे। देखिए, मानने की नीयत से भी मान भी लेंगे ना, फिर भी गलतियां करेंगे, कहां मानना ही नहीं। कौन आज इन सारी औरतों की तरह कहता है कि अल्लाह ठीक है, मेरे लिए रुकावट क्या है, प्रॉब्लम क्या है मेरे लिए। और आप सोचिए कि जब ये सारे इश्यूज चल रहे हैं तो मैं अक्सर सोचती हूँ, अल्लाह ना करे चेहरे पे हमारे कोई चीज ही ऐसी निकल आए, फिर हम मर्दों तो छोड़ दीजिए, औरतों से भी चेहरे छुपाएं। कई दफा चेहरे पे बाल होते हैं, कई सिस्टर्स हैं वो सिर्फ इसलिए अपने स्काफ नहीं उतारती कहीं के, वो कहती हैं कि हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल है। अब क्या करें, मजबूरी हो गई ना, कोई ऐसी चीज है। तो मजबूरी होने से पहले इंसान अगर अपने दिल की खुशी से इस तरह के काम करता है, हर नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। आप और मैं 18 पारे पढ़ने के बाद अगर उतने बालिग नहीं हुए ज़हनी तौर पर कि अल्लाह के हुक्म मान के भागें, अब इस हुक्म पे अमल करके देखिए। जब हम अल्लाह का एक हुक्म मानते हैं ना, तो उसके बाद अगला हुक्म मानने को दिल करता है। तो अल्लाह ताला हमें वही समा अता दे जो कि अंसारी औरतों को थी। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और आखिरी हुक्म तूबु इलल्लाह पे अल्लाह ताला हम सबका अमल भी करवा ले।